हेलोवीन का त्यौहार कुछ 2000 साल पहले 1 नवंबर को नए साल की शुरुआत मानते हुए मनाया जाता था। इस दिन को गर्मियों और फसलों का अंत और काली ठंडी सर्दियों की शुरुआत की तरह देखा जाता था। साल का ये समय मौत से जुड़ा हुआ था। 2000 साल पहले के लोग मानते थे कि नए साल से पहले की रात आत्माओं और इंसानों की दुनिया के बीच की दूरी बहुत कम होती है। माना जाता है कि 31 अक्टूबर हेलोवीन की रात आत्माएं धरती पर आज़ाद घूमती हैं। मेरा नाम है अर्श विनायक और आप सुन रहे हैं डेडारी पॉडकास्ट। डेडारी पॉडकास्ट के सीज़न 2 के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानियां शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल अपडेट वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे जाकर ज़रूर देखें। आज की तारीख है 31 अक्टूबर, आज की रात हेलोवीन की रात है और यही हमारे पहले एपिसोड का थीम भी है। और समय ना गवाते हुए आइए आज की कहानियाँ शुरू करें। इस साल की शुरुआत में मुझे पास के ही शहर में काफ़ी अच्छी तनख्वाह वाली जॉब का ऑफर मिला था। मैंने बहुत ही खुशी के साथ उन्हें हाँ का जवाब दिया था। मेरी जॉब, मेरे काम के दोस्त, इस शहर के लोग सभी बहुत अच्छे थे। जल्द ही मुझे इस जगह से प्यार हो गया था और मैंने यहीं पर अपना खुद का घर खरीदने का ठान लिया था। मुझे ये पता लगने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि इस खूबसूरत जगह में घर खरीदने के पैसे बहुत बहुत ज़्यादा थे। मुझे डर था कि मेरे अभी के रेंट, बिल्स और स्टूडेंट लोन्स को चुकाने के बाद मैं घर खरीदने के लिए कुछ भी पैसे जमा नहीं कर पाऊँगा। जो भी जगह मुझे मिलती, या तो वो बहुत महंगी होती या फिर बहुत ही गंदी होती। मेरे और मेरे दोस्तों के बीच कौन सबसे गंदी जगह ढूंढ सकता है, ये मानो अब एक खेल सा बन गया था। लेकिन जब मैंने इस घर की ऐड देखी तो मेरा सबसे पहला ख्याल यही था कि ओके, तो इस घर में क्या खराबी है। इस घर के आसपास ज़्यादा घर नहीं थे, पर यह इलाका ज़्यादातर सुरक्षित ही माना जाता था। इतनी कम कीमत देखकर सोचे बिना ही मैंने कॉल करके घर की इंस्पेक्शन बुक कर ली। उस घर में कदम रखते ही मैंने देखा कि यह घर काफ़ी अच्छे से बना हुआ था और हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी थी। मुझे घर दिखाने वाले एजेंट ने मुझे बताया कि ये घर अभी कुछ ही हफ्ते पहले खाली हुआ है। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों पहले वो हेलोवीन की रात को इसी घर में अपने बाथरूम में डूबकर मर गई थी। बाथरूम में झांक कर देखने पर मेरे पूरे जहन पे मानो हल्की सी ठंडक छा गई थी। क्या मैं सही में ऐसे घर में रह सकता हूँ जहाँ हाल ही में ही किसी की मौत हुई है? मैंने खुद को चुप कराते हुए सोचा कि मैं पहले भी कई रेंट करी हुई जगहों में रहा हूँ, ज़रूर किसी ना किसी में किसी की तो मौत हुई ही होगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये घर लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब घर से निकलते समय मैंने मुड़ के पीछे देखा और खुद को काम के बाद घर लौटते हुए सोचा, घर की खिड़कियों से बाहर घास पर आती रोशनी के बारे में सोचा, इतने में ही मुस्कुराते हुए उस एजेंट ने मुझे घर के कागज़ सौंप दिए, जैसे कि वो जानता हो कि मैं क्या सोच रहा था। अगले ही हफ्ते मैं उस घर में शिफ्ट कर रहा था। मेरा बैंक अकाउंट मानो पूरा ही खाली हो चुका था। घर के लोन के पेपर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी रूह शैतान को सौंप रहा हूँ। पर मैं जानता था कि ऐसा घर इतने कम दाम पे मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे नए काम के दोस्तों ने मेरे पूछने से पहले ही मेरी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए हाँ कर दिया। बड़े बच्चों की तरह हंसते खेलते हमने पूरा दिन घर के अंदर सामान रखने में निकाल दिया और रात को बड़ा सा पिज़्ज़ा और बियर की बॉटल्स के साथ हमने हंसते हुए टीवी देखा। पूरे घर में मेरे दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। मेरा खुद का घर, इस समय मुझे दुनिया में सब सही लग रहा था।
नितिन,
मेरे दोस्त आकाश ने अपने गीले हाथ अपनी पैंट पर साफ करते हुए मुझे कहा,
भाई मुझे लगता है तेरे बाथरूम में पानी लीक कर रहा है।
अरे यार, बोलते हुए मैं अपने बाथरूम की तरफ चल पड़ा। बाथरूम में सही में बाथटब के ऊपर वाले नलके से पानी टिप टिप करके गिरे जा रहा था। मैं चाहे उस नलके को जितना मर्जी जोर से बंद करूं, पानी टिप टिप करके गिरे ही जा रहा था। और फिर अचानक ही अपने आप पानी टपकना बंद हो गया। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं कल प्लम्बर को बुला के ये नलका चेक करवा लूँगा। अब रात में काफ़ी देर हो चुकी थी तो मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर लौट गए। दिन की मेहनत की थकावट इतनी ज़्यादा थी कि बेड पे लेटते ही मैं गहरी नींद में डूबने लगा। मैं धीरे धीरे पंखे को घूमते हुए देख रहा था जब मैंने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन थी। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि मुझे याद है मैंने बाथरूम की लाइट बंद करी थी। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगा जब मुझे वही पानी की टिप टिप करके गिरने की आवाज़ दोबारा आने लगी, लेकिन इस बार पानी में से छप छप की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम में बाथटब साफ चमकते पानी से आधा भरा हुआ था। बाथरूम की लाइट किसने चलाई का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया था। मैंने हाथ आगे बढ़ा के पानी को छुआ तो पानी का टेम्परेचर नहाने के लिए बिल्कुल सही था। जिस मोटे रिंकल से भरे हुए हाथ ने मेरे पीछे से मेरे गले को पकड़ा वो नॉर्मल इंसानों के हाथों से दो गुना ज़्यादा फुला हुआ था। हद से ज़्यादा ताकत के साथ उस हाथ ने मेरे सर को बाथटब के पानी के नीचे दबा दिया। मैं जितना ज़्यादा लड़ा, जितना ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करता, उतना ही पानी मेरे शरीर में बढ़ रहा था। गर्म पानी मेरी गर्दन को जलाते हुए मेरे फेफड़ों में भरे जा रहा था और मैं हाँफते चिल्लाते पसीने से भीगते हुए उठा। मेरा घर बिल्कुल शांत था, कोई लाइट नहीं चल रही थी, पानी के टपकने की आवाज़ नहीं थी और ना ही कोई मरे हुए हाथ मेरे आसपास थे। मैं अपने बुरे से सपने को भुलाते हुए किचन की तरफ पानी लेने के लिए चल पड़ा। वो ठंडा पानी पीकर मुझे अब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। नए घर में थोड़े बुरे सपने तो आएंगे ही, खासकर तब जब मुझे पता था कि इस घर में हाल ही में ही किसी की मौत हुई है। एक और ग्लास ठंडा पानी पीकर मैं बिस्तर पर लौट गया और इस बार मुझे कोई सपने नहीं आए। मुझे एक हफ्ता लगा ये महसूस करने से पहले कि मैं जाने अनजाने में ही अपने बाथरूम में जाने से कतरा रहा था। मैं जिम के बाथरूम में काम से पहले शावर ले रहा था, अपने दांत मैं जल्द से जल्द ब्रश कर रहा था और बाकी सभी चीज़ें मैं घर के छोटे वाले टॉयलेट में कर रहा था। मुझे अभी भी बुरे सपने तो नहीं आ रहे थे, या शायद आ रहे थे और मैं उन्हें दिमाग से निकाले जा रहा था, पता नहीं। जो कुछ भी हो, इस दिक्कत के बारे में मुझे कुछ तो करना है था। मैंने ठान लिया था कि ये सब मेरे दिमाग में ही है और थोड़े घबराते हुए ही सही, लेकिन मैंने उस बाथटब को पानी से भरा, उसमें बबल बाथ डालकर बबल्स बनाने लग गया और आराम से जाकर बाथटब में लेट गया। मैंने अपनी आंखें बंद करी और बड़ी सी राहत की सांस भरी। मैं अपने डर का सामना कर रहा था। मैं थोड़ी देर उन बबल्स में आराम से लेटा और फिर बाहर निकलकर पानी को बाथटब में से ड्रेन करने लग गया। पानी के हिलते ही मुझे पानी के नीचे कुछ ग्रे और फूला हुआ सा दिखाई दिया। बबल्स को हटा के झांकने पर मुझे पानी में कुछ नहीं दिखा। आज रात मेरा दोस्त आकाश मेरे घर रात बिताने आ रहा था। हमने देर रात तक बातें करी और फिर मैं अपने कमरे में और वो बाहर सोफे पर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो आकाश मेरे से पहले से उठा हुआ था और किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही उसने मुझे कहा,
अबे यार, तेरी दादी तेरे साथ रहने आई हुई थी तो मुझे पहले ही बता देता ना, मैं लगभग उनके नहाते हुए ही बाथरूम में घुसने वाला था।
मेरी आंखें आकाश के पीछे बाथरूम पे थी। मेरी आंखों के सामने बाथरूम के अंधेरे में से कोई उस अंधेरे से भी ज्यादा काला हल्का सा बाहर आया। उस चीज ने कोई आवाज नहीं करी, लेकिन वो ऐसा दिख रहा था जैसे कोई पानी से फूला हुआ मुर्दा इंसान रेंग रहा हो। उस चीज की सफेद आंखें मेरी रूह में झांक रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत ही नफरत भरी हुई थी।
तू ठीक है भाई?
आकाश की आवाज मुझे हकीकत में वापस लाए। बाथरूम के अंधेरे में अब कोई नहीं दिख रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ, कांपती हुई आवाज़ से मैंने कहा। मैं आकाश की शक्ल पे देख पा रहा था कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन उसने मुझसे दोबारा नहीं पूछा। हम दोनों काम के लिए घर से एक साथ ही निकले, लेकिन मैं आज काम पर नहीं गया। मैं एक लाइब्रेरी में गया था। मैं हमेशा उन लोगों को बुद्धू समझता था जो तांत्रिक या एक्सॉर्सिज्म जैसी चीज़ों में विश्वास करते थे, लेकिन आज मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। जब मैंने एक पंडित से एक्सॉर्सिज्म के लिए पूछा तो उन्होंने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। दूसरे ने मुझे बोला कि मैं अपने बुरे कर्मों की कीमत चुका रहा हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे 2000 रुपये भेजने के लिए कहा और कहा कि वो वहीं से उस शैतान को भगा देंगे। आखिर में जाके एक तांत्रिक ने मेरा कॉल उठाया। मुझे कॉल पर चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। मैं मानो फ़ोन से ही जलती हुई धूप को सूंघ पा रहा था। उस औरत ने बड़ी ही नर्म आवाज़ में मुझे कहा कि वो आज शाम ही मेरे घर को आके देख लेगी, और अगर वो मेरी मदद नहीं कर पाई तो वो मुझसे पैसे भी नहीं मांगेगी। शाम को उनसे मैं मेरे घर के बाहर ही मिला। उनका नाम शीतल था। हम मेरे घर के बाहर ही बैठे और शीतल ने आराम से मेरी पूरी कहानी सुनी। कहानी ख़त्म करके मैं खड़ा हुआ, घर का दरवाज़ा खोलकर एक कदम अंदर लेकर उनका इंतज़ार करने लग गया। शीतल मेरे घर के दरवाजे के बाहर बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़ी हुई थी। उन्होंने एक लंबी सी सांस भरी और घर के अंदर कदम रखा। ये सारी चीज़ें इस बाथरूम में शुरू हुई, कहते हुए मैं आगे बढ़ने लग गया। पर जब मैं पीछे मुड़ा तो शीतल दरवाजे से 2 कदम अंदर आके दोबारा पुतले की तरह खड़ी हुई थी। मैंने कुछ सेकंड रुककर पूछा, शीतल? कहते हुए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा ही था जब ये चीख इतनी तेज थी कि मानो मेरे घर की सभी खिड़कियां टूटने वाली हों। और शीतल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका गला सूख जाना चाहिए था, उनको सांस लेने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, लेकिन वो चिल्लाए जा रही थी। उनकी बड़ी सी चौकी हुई खुली आंखों में से अब आंसू बह रहे थे। मैंने शीतल को आगे पीछे हिलाया, मुंह पे थप्पड़ मारा, और जब कुछ काम नहीं करा तो उसे खींच के घर के बाहर ले गया। जैसे ही शीतल के पैर घर के दरवाजे से बाहर निकले, उनका चिल्लाना बंद हो गया। वो बिना पीछे मुड़े ही दरवाजे से दूर भागने लग गई और फिसल कर नीचे गिर गई। फिर भी वो खुद को घर से दूर खींचे जा रही थी।
नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती।
शीतल, अंदर अभी क्या हुआ?
मैं नहीं।
अपना सर ना के इशारा करते हुए वो लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठी और दरवाजे को लॉक कर दिया।
इस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जा।
इतना कहते ही अपनी गाड़ी को तेजी से वहां से भगाते हुए वो वहां से निकल गई। अब मैं अपने घर के बाहर अकेले लाचार होके खड़ा हुआ था, जो कि शायद से भूतिया था। मेरा डर जल्द ही गुस्से में बदल गया जब मैं एक एक करके अपने घर के सभी कमरे चेक कर रहा था। ये अच्छा घर है, शीतल का वो ड्रामा या तो मजाक था या वो मुझे लूटने का कोई तरीका था। मुझे अपने आप को रोशनी, शोर शराबे और लोगों के बीच में गुम करने की ज़रूरत है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने सभी दोस्तों को उसी रात एक सरप्राइज पार्टी के लिए बुला लिया। मैंने घर थोड़ा सा साफ करा और 4-5 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए। फिर भी मैं खुद को हर थोड़ी देर में बाथरूम की तरफ देखता हुआ पा रहा था। मैं काफ़ी खुश था जब मेरे ग्रुप में से ज़्यादातर सभी लोग पार्टी करने के लिए मेरे घर आ गए थे। मेरा दोस्त समर्थ अपने साथ एक करियोके की मशीन भी लाया था। अब मुझे मरी हुई बुरी औरत से ज़्यादा मेरे पड़ोसियों से शोर मचाने की शिकायत का डर था। हम सभी ने बड़े मज़े करे, और मैंने और मेरे एक दो और दोस्त ने शायद थोड़ी ज़्यादा ही पी ली थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने सोफ़े पे लेटा हुआ था। मेरा गला सूख रहा था। सोफ़े की साइड वाली घड़ी पे टाइम 3 बजे दिखा रहा था। मुझे किचन से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे से चल के किचन की ओर गया, जहाँ मुझे समर्थ दिखाई दिया। वो सीधे नलके से पानी पी रहा था।
भाई तूने ये पानी पिया है? क्या प्यारा पानी है भाई।
बड़ी सी सांस लेते हुए मैंने सोचा इसने ज़्यादा पी हुई है। फ्रिज से पानी की बॉटल लेके मैं अपने कमरे तक गया, लेकिन वहाँ मेरा दूसरा दोस्त राजू सो रहा था। मैं वापस सोफे पे जाके लेट गया। किचन से अभी भी पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। इस चीख के साथ ही मेरी नींद दोबारा टूटी। अपना सर पकड़ते हुए मैं किचन की तरफ गया, जहाँ से मुझे चीख की आवाज़ आई थी। राजू अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मुंह पे हाथ रख कर रो रहा था। समर्थ या उसका जो कुछ भी बचा हुआ था वो अभी भी नलके से चिपक कर पानी पी रहा था। उसका पेट अंदर से फटा हुआ था। खून और उसके अंदर के ऑर्गन्स सभी उसके आसपास गिरे हुए थे। अभी भी नलके से पानी उसके मुंह से होते हुए उसके खुले हुए पेट से बाहर मेरे किचन में बने खून के तालाब में बहे जा रहा है। अब चिल्लाने की बारी मेरी। राजू मुझसे पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था। पुलिस ने हम दोनों से पूछताछ की। मैं इन्वेस्टिगेशन और घर की साफ सफाई की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं काम से छुट्टी लेकर कुछ हफ्तों के लिए अपने माँ बाप के घर रहने के लिए चला गया था। मुझे वैसे भी इस समय से और कुछ ज़्यादा याद नहीं, सिवाय इसके कि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता मुझे बस समर्थ की खुली आंखें अभी भी नलके से चिपक कर पानी पीते हुए दिखाई देती। मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, मेरी जॉब, मेरे दोस्त सब उस नए शहर में थे। हर चीज के बारे में सोचने पर मुझे याद आया कि मेरे अलावा सिर्फ आकाश ही था जिसने उस भूत को मेरे घर में देखा था जब उसे लगा था कि मेरी दादी मेरे साथ रहने आई हुई थी। मैंने उसे कॉल करके अभी तक की पूरी कहानी बताई और उसे मेरे घर के बाहर मिलने के लिए कहा। हम दोनों घर के अंदर साथ घुसे। मैं घबराते हुए हर तरफ देख रहा था जब हम दोनों जाके सोफे पे बैठे। पूरे घर में डेटॉल की स्मेल थी। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझ में जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, मैंने धीरे से बोला, लेकिन जो समर्थ के साथ हुआ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैंने मन ही मन सोचा।
भाई हम दोनों काफ़ी खतरे में हैं,
आकाश ने बोला।
अगर तूने मुझे यहाँ भूत भूत भगाने के लिए बुलाया है तो तेरे को गलती लगी है। मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, पर एक चीज़ तो साफ है, ये जो कुछ भी है ये तभी लोगों का शिकार करती है जब वो अकेले होते हैं। उसने समर्थ को रात के अंधेरे में अकेले पकड़ लिया जब वो दारू के नशे में था। इसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी थी जब मैं रात को अकेले नींद में बाथरूम में घुसने वाला था। तो शायद अगर हम दोनों साथ में इसका सामना।
देखो वो आवाज़ सुनाई दे रही है, मैंने उसकी बात काटते हुए बोला।
कौन सी आवाज़?
आकाश ने चिंता भरी नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा।
भाई तू मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है।
मैंने उसी समय खड़े होकर बाथरूम की तरफ उंगली करी और ऊंची आवाज़ में बोला, वो आवाज़ पानी की बूंदें टपकने की आवाज़ वहाँ बाथरूम के अंदर से आ रही है। मुझ में अकेले अंदर जाके देख करने की हिम्मत नहीं थी और आकाश ये जानता था। हम दोनों साथ में धीमे कदमों के साथ बाथरूम की तरफ चल पड़े। पानी टपकने की आवाज़ मेरे हर कदम के साथ बढ़ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस आवाज़ से पागल हो जाऊंगा, लेकिन आकाश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी आंखों को कस कर बंद करके मैंने दरवाजे को धक्का मार के खोला। बाथटब साफ मानो रोशनी में चमकते हुए पानी से भरा हुआ था। एक एक करके पानी की बूंदे इस सुनहरे पानी में गिर रही थी। मैंने जैसे ही ये देखा मुझे मालूम था कि मुझे इसमें अपना सर डालना है और ये ठंडा सुनहरा पानी मेरे सभी बुरे ख्यालों को मिटा देगा। उस साफ चमकते पानी के नीचे कोई भी काली परछाइयां नहीं थी। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ये थी कि मैं बाथरूम के बाहर ज़मीन पर रेंग रहा था। पेट से ऊपर का मेरा पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। मैं चिल्ला रहा था, लड़ रहा था बाथटब में वापस लौटने के लिए, और आकाश अपनी पूरी ताकत से मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था।
तू खुद को डुबा रहा था,
आकाश जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुन के जैसे मुझे होश सा आया। कुछ मिनट के लिए हम दोनों वहीं जमीन पर लेटकर हाफ रहे थे। बाथरूम का खुला हुआ दरवाजा हम दोनों के सामने किसी भूखे जानवर की तरह खड़ा हुआ था। आखिरकार उस खामोशी को तोड़ते हुए आकाश ने बोला, भाई तू इस बाथटब को निकलवा क्यों नहीं देता? मैंने वैसा ही किया। मुझे इसके लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े, पर मैंने लोगों को बुला के बाथटब हटवाने का फैसला कर लिया था। पूरे समय उन पर नज़र बिठाए हुए था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। रात को मैं आकाश के घर पे सो रहा था और सुबह शावर मैं जिम में ले रहा था। शावर के पानी को नीचे ड्रेन में बहता देख मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन जिम की आवाज़ और आसपास के लोगों की आवाज़ मुझे थोड़ा चैन दिलाती थी। अगर मैं कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करता तो ऐसा लगता कि मानो वही ग्रे पानी से फूली हुई औरत का मुर्दा शरीर मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था। आखिरकार मेरे घर में काम ख़त्म हो गया था। मैंने उस पूरे बाथरूम को ही भरवा दिया था। अब उस बाथरूम का कोई नामो निशान नहीं था जहां उस बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी सांसें भरी थी। जो लोग यहां काम कर रहे थे वो बाथटब को रद्दी खाने में बेचने के लिए अपने साथ ले गए थे। आज हेलोवीन की रात से पहले मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। सब वापस नॉर्मल हो रहा था। मैंने अपना घर हेलोवीन की सजावटों से सजाया हुआ था। शाम का समय था जब एक गंदा सा ट्रक मेरे घर के सामने आके रुका और कुछ मास्क पहने हुए गंदे से कपड़ों में आदमी उससे बाहर निकले और उन्होंने मेरे घर के सामने कुछ फेंक दिया। वही बाथटब था। मैंने डर भरी नज़रों से उन्हें ट्रक में वापस बैठकर वहां से तेज़ी से निकलते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बाथटब खरीदा था या रद्दी खाने से चुराया था। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि ये बाथटब यहां से निकाला गया था, पर अब वो बाथटब यहां लौट आया है। मैं अभी अपनी कहानी लिखते हुए खुद को बार बार खिड़की से बाहर झांकते हुए पा रहा हूँ। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे हजारों परछाइयाँ मेरे घर की तरफ, उस बाथटब की तरफ बढ़ रही हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने खिड़की से अपनी नज़र एक पल भी हटाई तो उसमें मुझे कुछ भयानक दिखाई दे जाएगा। एक फूला हुआ, पानी में डूबा हुआ, गलते हुए कद्दू के जैसा चेहरा, मुंह जिसमें से पानी की नदी बह रही हो। अब जब चांद की रोशनी इस पुराने से बाथटब को छू रही है तो इसके बारे में कुछ तो सुंदरता है। जिस तरीके से ये सफ़ेद हड्डी के रंग वाला टब बस मेरे घर के सामने रखा हुआ है वो बहुत सुंदर और शांत लग रहा है। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर उसमें जाके लेटना चाहिए। मैं चांद की सुनहरी रोशनी अपने शरीर पर महसूस करना चाहता हूँ। आखिरकार काफ़ी समय से चैन से बाथटब में लेटकर मैं नहाया भी तो नहीं हूँ। ओके, ये अब कहानी तो ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी इस वीडियो को बंद मत करना। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं आपसे सिर्फ कुछ और सेकंड मांगना चाहूँगा। अगले हफ्ते आपको किस थीम पे कहानी सुननी है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब से मैं हर बार कमेंट्स में से ही थीम लिया करूँगा। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया फॉर्मेट कहानी के साथ पिक्चर्स कैसा लगा। और आखिर में मैं साल के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर्स देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर आपको और भी बेहतरीन डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।